الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम सूरह बनी इसराइल की तफसीर पढ़ते हैं, मआरिफ़ अल कुरान जिल्द नंबर 5 से, और ये जो आयात तिलावत की गई इंशाल्लाह इनके बारे में आज हम अपनी बात जारी रखेंगे। पिछली क्लास में वला तक्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक के अल्लाह ताला का यहाँ पे हुक्म है कि नहीं अपनी औलाद को कत्ल करो खश्यत इमलाक, मुफलिसी के खौफ से। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी। ठीक है, तुमको भी, पहले उनका जिक्र किया, उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी रिस्क देते हैं। इन कत्लहुम कान खतअन कबीरा, बेशक उनका कत्ल एक बहुत बड़ी खता है। खतअन कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी यानी नाअंदेशी है, बेवकूफ़ी है और कम अकली है। कम अकली तो क्या, बिल्कुल ही बदअकली है। जाहिर, अपनी औलाद को कत्ल कर देना, ये कहाँ किसी इंसान से तवक्को की जा सकती है कि वो अपनी ही औलाद को कत्ल कर दे। औलाद के साथ तो इंसान को मोहब्बत होती है, एक तबीई मोहब्बत अल्लाह ताला ने दिल के अंदर माँ बाप के डाली हुई होती है। ठीक है, औलाद नहीं भी होती ना, तो उससे पहले भी औलाद की मोहब्बत कि या अल्लाह औलाद हो जाए। जिनके घरों में औलाद नहीं है, वो शादीशुदा हैं और औलाद पैदा नहीं हो रही, तो उनसे पूछें, अगर आपके ऊपर ये वक्त गुजरा है या गुजर रहा है तो आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कितना ज़्यादा चाहत होती है कि मेरी औलाद हो जाए। ठीक है, कितनी डॉक्टरों के चक्कर लगाती हैं, कितने जो है वो उसके लिए रिसर्च, खुद भी अगर पढ़ना लिखना आता है तो रिसर्च भी करती हैं और हकीम के पास भी जा रही हैं और मौलवी साहब के पास भी जा रही हैं दुआ करवाने के लिए, पीर साहब के पास भी जा रही हैं दुआ करवाने के लिए, राइट, कि औलाद हो जाए, औलाद हो जाए, औलाद हो जाए। तो ये सब क्या है, ये औलाद की मोहब्बत ही तो है। अभी तो नज़रों के सामने आई भी नहीं है लेकिन इतनी मोहब्बत है। ठीक है, फिर उसके बाद जब पता चल जाता है कि अच्छा जी औलाद अब आने वाली है, तो उसके बाद कितनी तो यानी कचौके उठते हैं दिल के अंदर कि अच्छा जी औलाद आने वाली है, उसके लिए इतनी तैयारी करनी है, उसके लिए सोचें, राइट। जो दुनिया दुनियादार होते हैं वो दुनियावी एतबार से तैयारी कर रहे होते हैं, जो दीनदार होते हैं वो दीनी एतबार से तैयारी कर रहे होते हैं कि कसरत से जो है वो दुआएं मांग रहे होते हैं अपनी औलाद की की नेक तौफीक के लिए, कुरान मजीद की तिलावतें कर रहे होते हैं कि हाँ भाई औलाद जो अभी मौजूद है जिस्म के अंदर वो कुरान मजीद की तिलावत सुन सुन करके वो कुरान की हाफिज़ हो जाए, हाफिज़ा हो जाए, पेट के अंदर ही कुरान की हाफिज़ा बन जाए। ठीक है, हाफिज़ बन जाए, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं, कितनी मोहब्बत होती है औलाद के साथ, कितनी मोहब्बत होती है। और फिर उस औलाद को इंसान खुद कत्ल कर दे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, यानी इंसान यहाँ तक भी पहुँच जाता है, अनइमेजिनेबल, तसव्वुर से बाहर कि अपनी औलाद को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हो रहा है दुनिया के अंदर और माजी में भी होता रहा है। अब इसकी मुख्तलिफ शक्लें रही हैं। ठीक है, मुख्तलिफ शक्लें क्या, कि औलाद को आने से पहले ही रोक दिया जाए, जैसे कि आखिरी बात पढ़ी थी जब्त तौलीद और जो खानदानी मनसूबा बंदी वाली जो जो बातें हैं, तो औलाद को आने से पहले ही रोक दिया जाए, या औलाद जो है वो कंसीव हो चुकी है उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाए, अभी दुनिया में नहीं आई, बाहर नहीं आई। ठीक है, तो उसको अबॉर्शन कहते हैं शरीर लफ्ज इसके लिए, वअद खफियन। ठीक है, वअद जैसे वइदल मौऊदतु सुइलत, ठीक है, कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं ना कि उन लड़कियों से सवाल किया जाएगा कि तुमको बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, तुम्हें किस गुनाह की वजह से कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, तो बहरहाल, और फिर दुनिया में आ जाने के बाद कत्ल कर देने वाली भी मिसालें दुनिया के अंदर बहुत कसरत से मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर एक जो तफसीर इशारी, एक इशारा लिया था इसके अंदर से, वो इशारा क्या था कि एक होता है जिस्मानी कत्ल, ठीक है, और इस आयत का जो जाहिरी मानी है वो जिस्मानी कत्ल ही से मुताल्लिक है, लेकिन एक रूहानी कत्ल भी तो होता है। रूहानी कत्ल यानी औलाद की रूहानियत को मार दिया जाए, औलाद की, औलाद के दीन को ख़त्म कर दिया जाए, किस वजह से, खशियत इमलाक की वजह से। ठीक है, कि खाएंगे कहाँ से, तो इनका अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनको ऐसे रास्ते के ऊपर डाल दिया कि जिससे उनका दीन बर्बाद हो जाए और आखिरत में वो जहन्नुम के अंदर जाने वाले बन जाएं। तो ये कौन सी वाली सूरत होती है, इसकी क्या शक्ल बनती है, इसकी शक्ल ये बनती है कि औलाद को ऐसे चीज़ें सिखाई जाएं, ऐसे माहौल के अंदर भेज दिया जाए कि जहां पे उनको दुनियावी मालो असबाब मिल रहा हो लेकिन उनका दीन मुतासिर हो रहा हो, दीन खराब हो रहा हो। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो तालीमी निज़ाम, क्योंकि तालीम के ज़रिए से बज़ाहिर दुनिया के अंदर ये एक निज़ाम बना हुआ है कि जैसी जैसी होगी तो वैसा अच्छा रिस्क होगा। ये इंसानियत की एक जहन साजी हुई हुई है। ठीक है, कि जितना इल्म होगा उतना हिसाब से जो है ना वो पैसा मिलेगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने असबाब को असबाब से जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल नफी नहीं की जा सकती, असबाब के दर्जे में ये बात बिल्कुल सही है, राजिक तो अल्लाह ताला है। ठीक है, राजिक तो अल्लाह ताला है, लेकिन रिस्क को भी तो अल्लाह ताला ने असबाब से जोड़ा हुआ है ना। ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो औलाद देने वाले हैं, औलाद कौन देता है, अल्लाह ताला देते हैं ना, लेकिन औलाद को अल्लाह ताला ने असबाब से जोड़ा हुआ है ना कि भाई शादी होगी तो फिर अल्लाह ताला औलाद देंगे। ठीक है, शादी के बगैर, शौहर के बगैर औलाद नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जो उसके लिए दवाओं की ज़रूरत है या उसके लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है, उसके लिए जो है वो सेहत की ज़रूरत है, तो ये सब असबाब हैं। कोई ये तो नहीं कहता ना कि नहीं नहीं अल्लाह ताला औलाद देंगे, मुझे इन असबाब की ज़रूरत नहीं है। कोई ये कह सकता है, ये नहीं कह सकता, ये तो हमारे दीन के ख़िलाफ़ बात हो जाएगी कि भाई नहीं नहीं बस अल्लाह ताला औलाद देने वाले हैं, मुझे कोई असबाब अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये गलत है, ये दीन में ये इसकी तालीम नहीं दी गई, दीन में असबाब इख्तियार करने की तालीम दी गई है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने रिस्क को जो है वो इंसान की इल्म से जोड़ा है, इंसान के इल्म से जोड़ा है कि इंसान के पास जितना इल्म होगा उसके हिसाब से उसको अच्छा रिस्क मिलेगा। इसकी नफी नहीं कर सकते, कोई आकर के मौलवी साहब हो या पीर साहब हो या जो भी साहब हो, वो आपको आकर के ये नहीं कह सकते कि नहीं, इल्म हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला उसके बगैर ही रिस्क दे देंगे, मत हासिल करो इल्म, अपनी औलाद को मत इल्म दिलवाओ, कोई भी नहीं कह सकता। ठीक है, ये हमारे दीन के खिलाफ है, असबाब इख्तियार ना करना ये हमारे दीन के खिलाफ है। फिर क्या मसला है तालीमी इदारों में भेजने के साथ। ठीक है, तो इसका कोई आप में से कोई उसूली जवाब दे, उसूली जवाब, ठीक है, जिस एक प्रिंसिपल आंसर जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाए कि मसला क्या है फिर तालीम दिलवाने में। भाई रिस्क जो औलाद को मिलना है तो वो असबाब के जरिए से मिलना है, और असबाब इल्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जितना इल्म होगा उतने जो है वो आपको रिस्क मिलेगा। ठीक है, तो अब मसला क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द प्रॉब्लम या व्हाट इज द कैच, क्या इसके अंदर जो है वो तफसील क्या है इसकी, या इसके अंदर अब कैच के लिए क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उर्दू में। जी आपसे सवाल है, औलाद वाली एग्जाम्पल को इस्तेमाल करके भी आप ये जवाब दे सकती हैं। जी क्या जवाब है भाई इसका, ये तालीमी निज़ाम के खिलाफ क्यों बात करते हैं, जबकि तालीम ज़रूरी है और तालीम जो है वो एक निज़ाम के तहत मिलती है। कोई तालीमी निज़ाम होगा, कोई सेटअप होगा, तो फिर तालीम मिलेगी ना। तो फिर वाई आर यू सो, सवाल तो मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, बट हम तालीमी निज़ाम के खिलाफ क्यों बात करते हैं? निसाब और तालीमी इदारों का माहौल, मुरबी तरबियत माहौल का मसला है। औलाद के लिए असबाब की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो असबाब इख्तियार करें तो औलाद होगी, अगर असबाब इख्तियार ना करें तो औलाद नहीं होगी, ठीक है ना भाई? सही है। व्हाट अबाउट अच्छा नहीं, ठीक, मैं अपना सवाल असल में आप लोगों को डिस्क्राइब सही से बयान ही नहीं कर सका हूँ, तो आपका कसूर नहीं है, साजिश का ही कसूर है, कि औलाद कैसे मिलेगी, बल्कि आगे की आयत जो दूसरी आयत हमने तिलावत करी थी ना, राइट, उस आयत के अंदर जवाब मौजूद है। औलाद का ये भी तो एक तरीका है, जिना, जिना के जरिए से औलाद नहीं होती औलाद, वो भी तो औलाद ही होती है। ये तो नहीं होता कि जिना से जो बच्चा इस दुनिया में आए तो वो औलाद नहीं होती, वो औलाद नहीं होता, वो भी तो औलाद होता है। तो क्या ये जायज़ है कि औलाद हासिल करने के लिए चूंकि असबाब की ज़रूरत है, ठीक है, तो अब शादी किए बगैर ही औलाद दुनिया में ले आओ असबाब इख्तियार करके, क्या ये जायज़ है? नहीं, ऑफ कोर्स ये जायज़ नहीं है, राइट? किसी भी मर्द से अपनी औलाद लेकर के आ जाओ दुनिया में, तो क्या ये जायज़ है? नहीं। तो जायज़ कब बनेगा ये? ये सबब जायज कब बनेगा? जब हलाल तरीके से निकाह के जरिए से औलाद दुनिया में आएगी, ठीक है ना भाई? तो क्या आप औला आप क्या असबाब की नफी कर रहे हैं? असबाब की नफी तो नहीं कर रहे ना, राइट? आप असबाब की नफी तो नहीं कर, आप ये तो नहीं कह रहे कि नहीं असबाब के बगैर ही औलाद आ जाएगी। क्या कर रहे हैं फिर? हलाल असबाब इख्तियार कर रहे हैं, हलाल असबाब, हराम असबाब इख्तियार नहीं कर सकते औलाद के लिए। हालांकि औलाद हराम असबाब से भी आ सकती है, लेकिन इख्तियार नहीं कर सकते। अगर करोगे तो सजा मिलेगी, अगर करोगे हराम असबाब इख्तियार तो सजा मिलेगी। बात समझ में आ गई? उसूल समझ में आ गया, ठीक है। यही उसूल जो है वो तालीम के साथ भी है, यही उसूल तालीम के साथ भी है, ठीक है, कि भाई हलाल तालीम इख्तियार करोगे तो भी रिस्क मिलेगा, हराम तालीम इख्तियार करोगे तो भी रिस्क मिलेगा, लेकिन अगर हलाल इख्तियार करोगे तो उस रिस्क से दुनिया और आखिरत दोनों का फायदा होगा, और अगर हराम तालीम इख्तियार करोगे तो उस जो उसके बाद रिस्क मिलेगा उसमें दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान होगा, सजा मिलेगी, ठीक है। तो फर्क क्या हो गया? ये तो नहीं कह रहे कि भाई असबाब इख्तियार ना करें, तालीम मत दिलाएं, ये तो नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? कि तालीम हलाल दिलवाएं अपनी औलाद को, हलाल तरीके से दिलवाएं अपनी औलाद को, कंटेंट भी हलाल होना चाहिए, तालीम का मवाद भी हलाल होना चाहिए, और तालीम देने का तरीका भी हलाल होना चाहिए। हराम ना तो कंटेंट, ना तो तालीम का कंटेंट हराम होना चाहिए, और ना तालीम देने का तरीका हराम होना चाहिए। जिससे अल्लाह ताला ने मना किया उसको तो हराम कहते हैं ना। हराम किस चीज को कहते हैं? जिससे अल्लाह उसके रसूल ने मना किया, ठीक है। तो अब हलाल तालीम क्या है? आलिम कोर्स, ये हलाल तालीम है? नहीं, आलिम कोर्स, आलिमा कोर्स सिर्फ ये हलाल तालीम तो नहीं है, ठीक है ना। हलाल तालीम तो भाई वो तालीम है कि जिससे कि इंसान को दुनिया और आखिरत का फायदा हो, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लैंग्वेजेस, ठीक है, जुबान, क्योंकि तालीम का जो सबब है, जिस सबब से आप तालीम हासिल करते हैं, जिस टूल से इल्म हासिल करने का जो टूल है वो क्या है? लैंग्वेज, जुबान। आप इस क्लास के अंदर क्या कर रही हैं, बैठ करके इल्म हासिल कर रही हैं ना, ठीक है ना। अगर आपको उर्दू जुबान नहीं आती तो क्या आपके कुछ समझ में आता कि आज इसके आप बोल रहे हैं आपसे? आपको उर्दू जुबान आती है तभी तो आप इल्म हासिल कर रही हैं ना, राइट। तो लैंग्वेज के बगैर इल्म नहीं हासिल किया जा सकता, नहीं, ठीक है। उसी तरह इल्म जो अरबी जुबान के अंदर मौजूद है, तो अरबी जुबान का लेक्चर सुनने के लिए या अरबी जुबान की किताब पढ़ने के लिए आपको अरबी जुबान का इल्म हासिल करना होगा, ठीक है। अंग्रेजी के अंदर जो मटेरियल मौजूद है, उस मटेरियल को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको अंग्रेजी जुबान का इल्म हासिल करना होगा, ठीक है। तो सबसे अहम चीज तालीम हासिल करने के लिए क्या है? इल्म, सॉरी, जुबान। इल्म हासिल करने के लिए जुबान। तो लैंग्वेजेस, जो जरूरी लैंग्वेजेस हैं भाई आपकी, जो अगर आपकी उर्दू मादरी जुबान है तो मादरी जुबान उर्दू का इल्म हासिल करना, ठीक है। फिर इल्म आपके जो जो दीन है उसका इल्म जो है वो अरबी जुबान के अंदर मौजूद है, तो अरबी का इल्म हासिल करना, ठीक है। हम सिर्फ सवाब के लिए अरबी जुबान सीख लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिसको अरबी का थोड़ा शौक भी पड़ता है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा सवाब के लिए अरबी सीखता है। भाई सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन इल्म, इल्म भी तो मिलेगा ना अरबी जुबान सीखने से, ठीक है। दूसरी तरीके से तीसरी जुबान जो इस वक्त इंटरनेशनल लैंग्वेज दुनिया के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर काफिरों का काम सारा का सारा अंग्रेजी के अंदर हमें मिलता है, बहुत सारी चीजें हमें अंग्रेजी में मिलती हैं, तो उसका इल्म हासिल करने के लिए अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लैंग्वेजेस सीखना, लेकिन लैंग्वेजेस सीखने में लाजमी है कि कोई ऐसी चीज ना मवाद में मौजूद हो कि जिससे कि हराम तरफ इंसान का जहन जाता हो, हराम बातें उसके जहन के अंदर दाखिल होती हों। जैसे उर्दू जुबान सीखने के लिए आप जो है वो अच्छी अच्छी नसीहत वाली चीजें भी पढ़ सकते हैं, और उर्दू जुबान सीखने के लिए आप वो जो डाइजेस्ट होते हैं जिसके अंदर जो है वो मुआशरे वाली कहानियां होती हैं, और नाउज़ुबिल्लाह बहुत ही नजिस किस्म की भी कहानियां मौजूद हैं उर्दू जुबान के अंदर। तो आप कौन सी वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे उर्दू जुबान सीखने के लिए, जिनके अंदर अच्छा कॉन्टेंट है या जिनके अंदर गलीज कॉन्टेंट है, राइट। उर्दू की घटिया नॉवलें पढ़ेंगे उर्दू जुबान सीखने के लिए, या उर्दू की अच्छी किताबें पढ़ेंगे उर्दू जुबान सीखने के लिए, राइट। घटिया किताबें क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, उर्दू सीखना है तो घटिया किताबों के अंदर उर्दू मौजूद होती है, आप उर्दू सीख सकते हैं गंदी किताबों से। क्यों नहीं पढ़ेंगे गंदी किताबें? क्योंकि उनके अंदर जो गंद होती है, जो गलाजत होती है, जो बुरे यानी उसके अंदर तालीमात होती हैं, तो उससे आपका जहन खराब होगा, आपके दिल के अंदर गलत जज्बात पैदा होंगे, आपको गुनाह का ख्याल आएगा, आपको गुनाह के तरीके जो है वो उस किताब को पढ़ करके समझ में आएंगे, ठीक है। फिर शैतान के लिए आपसे गुनाह करवाना आसान हो जाएगा। तो उर्दू जुबान सीखने के लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है ना या नहीं है? नहीं, कोई भी कंटेंट हो, मुझे तो उर्दू जुबान सीखनी है, मैं तो हर किस्म की चीजें पढ़ूंगा। नहीं, कंटेंट हलाल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अंग्रेजी जुबान सीखने के लिए भी तो कंटेंट हलाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी जुबान सीखने के लिए हम अपने खुद भी पता नहीं क्या क्या वाहियात कस्म की नॉवलें पढ़ी जब बचपन में अंग्रेजी सीख रहे थे, ठीक है ना। पता नहीं किस किस्म की जो है वो, यानी स्कूल लेवल के ऊपर भी और कॉलेज लेवल के ऊपर भी और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी किस किस किस्म की वाहियात लिटरेचर अंग्रेजी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और औलाद को भी वही सब पढ़ा रहे होते हैं, भाई अंग्रेजी सीख ले मेरी औलाद, मेरे बच्चों को अंग्रेजी आ जाए, तो इस वजह से जो अंग्रेजी में मिल रहा है वो पढ़ो जा करके, नॉवेलें जा करके किसी बुक स्टोर से जा करके उनकी नॉवेलें खरीद करके ले आओ, या जो है वो ऑनलाइन कोई इस तरह की चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो, या इवन आजकल तो स्कूलों के लेवल के ऊपर 6th ग्रेड की जो किताब मौजूद है सऊदी अरब के अंदर, सो कॉल्ड इस्लामी स्कूल है, इस्लामी स्कूल, और कहाँ पर है? सऊदी अरब के अंदर, और 6th ग्रेड की अंग्रेजी की किताब के अंदर इतनी वाहियात चीजें मौजूद हैं तस्वीरों के साथ, ठीक है ना। बड़े अरसे के बाद फिर किसी ने उसके ऊपर आवाज उठाई और फिर स्कूल बोर्ड से जो है वो कंप्लेन करी, तो कुछ काफी अरसे के बाद फिर उन लोगों ने उस किताब को खत्म वहां से हटाया है। तो आप सोचें छठी जमात की क्लास की किताब के अंदर किस किस्म की वाहियात चीजें मौजूद है, ठीक है। तो क्या कंटेंट कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो भाई इल्म हासिल करना जरूरी है। इल्म हासिल करने के साथ इंसान की रिस्क का जो है वो अल्लाह ताला ने ताल्लुक जोड़ा हुआ है, लेकिन कौन सा इल्म, क्या तरीका हासिल हो, क्या इख्तियार करना चाहिए उस इल्म के लिए, क्या तरीका हमें नहीं देखना चाहिए? हमारी औलाद कहाँ पे जाकर के इल्म हासिल कर रही है, कैसे इल्म हासिल कर रही है, क्या कंटेंट है, किन लोगों के साथ बैठ करके इल्म हासिल कर रही है, और कौन से टीचर्स हैं, टीचर्स कैसे हैं जो कि हमारी औलाद को इल्म सिखा रहे हैं? क्या वो टीचर्स नेक और कम अज़ कम मुसलमान हैं? क्या वो टीचर्स जो है वो उनका नज़रिया दुनिया के बारे में, हयात के बारे में, राइट, कुछ है उनका सही नज़रिया है? छोटे छोटे बच्चों के सामने बैठ करके जो है वो टीचर्स जिस किस्म की चीज़ें उनको सिखा रहे होते हैं, छोटे बच्चे तो उनको तो पता ही नहीं होता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। आप 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, और वहां पे किस किस्म के टीचर्स होते हैं? जो इंडिया में रहने वाले हैं उनको तो पता है, जय श्री राम के नारे लगवा रहे होते हैं आजकल, तो ये भी अल्लाह का एक एहसान है कि मुसलमानों को जो है ना वो कुछ झंझोड़ने के लिए काफिरों से जय श्री राम के नारे लगवाने शुरू कर दिए। अब जो है ना वो बड़ा फिक्र हो गई है बहुत सारे मुसलमानों को कि जय श्री राम के नारे हमारे बच्चों से लगवाए जा रहे हैं, ओहो हमें तो उन उदारों में नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन खुदा की कसम ये ज्यादा बेहतर है मुसलमानों के लिए, ठीक है, कि कुफ्र खुल के सामने आ गया है, कुफ्र खुल के सामने आ गया है, क्योंकि इससे पहले ज्यादा खतरनाक था वो, इससे पहले वो ज्यादा खतरनाक था, खुल के सामने नहीं आया होता। हम जो है ना वो बिल्कुल बिला खौफ बच्चों को भेज रहे होते थे और वहां से वो कुफ्र सीख करके आ रहे होते थे, उनका उनका दिलो दिमाग जो है वो काफिराना बन रहा होता था और दीन और आखिरत के और रूहानियत के खिलाफ हो रहा होता था, लेकिन हमें कोई एहसास नहीं था। हम कह रहे थे, हम समझ रहे थे वो खाली वो तो खाली जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स सीख करके आ रहे हैं, बिल्कुल कोई एहसास नहीं होता था। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना खुल करके वो सामने आ गए हैं कि अब उन बेगैरतों को भी कुछ फिक्र हो गई है जिनको पहले कोई फिक्र नहीं थी। बिल्कुल जिस तरह से अमेरिका के अंदर जो बहुत सारे मुसलमान वहां पे मौजूद हैं, ठीक है, तो वो रेगुलर स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को भेज रहे होते हैं, रेगुलर स्कूल्स के अंदर, आम स्कूलों के अंदर, पब्लिक स्कूल्स के अंदर, वहां पे ईमान की भी नफी हो रही होती है और वहां पर हया की भी कामिल नफी हो रही होती है। बिल्कुल बेहया और बेईमान इंसान बच्चा बन रहा होता है, कोई फिक्र नहीं थी उनको। अभी पिछले 2 साल से 3 साल तकरीबन अमेरिका के अंदर जो ये खुल करके नई हुकूमत आई है ना उनकी, ये जो डेमोक्रेट की हुकूमत है, इन्होंने खुल करके जिस तरह से ये हम जिंस परस्ती वाले कॉन्सेप्ट्स को स्कूलों के अंदर दाखिल किया है और बहुत बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ स्कूलों के अंदर दाखिल किया है, ठीक है, यानी वो इस बेहयाई की एक्सट्रीम हालत, एक्सट्रीम कैफियत को खुल करके वो सपोर्ट कर रहे हैं ना, अब उन वालिदैन को भी फिक्र पड़ गई है जिनको पहले कोई फिक्र नहीं हो रही थी, जो समझ रहे थे हमारा बच्चा जो है वो खाली इल्म हासिल करने के लिए स्कूल जाता है और कोई बुरी बात जहन में नहीं लेकर के आता, अब उनको भी फिक्र हो गई है, ठीक है। तो अब जो है ना इस वक्त, राइट नाउ, जो इस्लामिक स्कूल्स हैं अमेरिका के अंदर, वहां पर लाइनें लगी हुई हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन दे दो, हमारे बच्चों को एडमिशन दे दो, लेकिन उन स्कूलों के पास जगह ही नहीं है अब, तो वेटिंग लिस्ट के अंदर कई कई 100 बच्चों का नाम जो है ना वो वेटिंग लिस्ट के अंदर है उन स्कूलों में, क्योंकि अब स्कूलों के अंदर जगह नहीं है कि इतने सारे बच्चों को एडमिशन दे सकें। ये इतने सारे बच्चे क्यों आ गए इस्लामिक स्कूल की तरफ? क्योंकि वो खुल करके सामने आ गए, पहले भी वो सामने थे लेकिन हमारी आंखें अंधी थी, हमें नजर नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के साथ, मानने के लिए तैयार नहीं थे। यही मामला जो है वो इंडिया के अंदर भी हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर तो हर चीज ही मौजूद है, वो भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, समझ में नहीं आ रहा किसी के, बात ही नहीं मान रहे ना बिल्कुल भी कि नहीं, स्कूलों से कुछ नहीं होता और यहाँ पे तो खाली कंटेंट यानी इल्म हासिल कर रहे होते हैं और जो है वो हमारा दीन इल्म के खिलाफ नहीं है और इस किस्म की फजूलियात जो है वो बकरे होते हैं खाली, पूरी पूरी नस्लें हमारी बर्बाद हो चुकी हैं इस तालीमी निज़ाम के हाथों, मर्द भी बर्बाद हो चुके हैं, औरतें भी बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन हमें जो असल वजह है बर्बादी की वो समझ में ही नहीं आ रही। अरबी हम इस नियत से, आप किसी ने डायरेक्ट मैसेज में लिखा है कि अरबी हम इस नियत से सीख रहे हैं कि जन्नत में नबी से बात करेंगे, क्या ये नियत सही है? नहीं, ठीक है, जन्नत में नबी से बात, आपको अरबी नहीं आती होगी आप नबी अलैहिस्सलाम से बात नहीं कर सकेंगे, नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मेरा भाई कहाँ कहाँ यहाँ पढ़ने से क्या फायदा, मरने के बाद अरबी लैंग्वेज खुद हो जाएगी। मरने के बाद जन्नत में पहुंचेंगे तो अरबी लैंग्वेज आपको खुद सिखा दी जाएगी, ठीक है? मरने के बाद जन्नत में अगर पहुंचेंगे तो अरबी लैंग्वेज आपको खुद ब खुद सिखा दी जाएगी, ठीक है? लेकिन जन्नत में पहुंचने के लिए जो चीज चाहिए, जो इल्म चाहिए, ठीक है, जो काम करने जन्नत में पहुंचने के लिए, उसके लिए अरबी जुबान सीखें इस दुनिया के अंदर, ठीक है? नबी अलैहिस्सलाम से बात करने के लिए अरबी जुबान ना सीखें, वो सिखा दी जाएगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? इस दुनिया के अंदर कुरान मजीद और हदीस मुबारक और दीन का इल्म सीखने के लिए अरबी जुबान सीखनी पड़ती है, ठीक है? तो बेवकूफ़ी की बातों की तो कोई हद नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। बहरहाल पूछ लिया करें अपनी तरफ से, अजम्पशंस कर करके जो है ना, वो अजीब व गरीब किस्म की ना खिचड़ी बना करके लोगों ने रखी हुई है। कल भी आप में से किसी खातून ने कुछ सवाल भेजे थे कि फलानी आई, उन्होंने ये बात कही और मैंने ये बात जवाब दी। मैंने कहा ये औरतों को एक नया मशगला आ गया। पुराने ज़माने में औरतों का मशगला ये था कि बैठती थी ना तो बस पूरी मोहल्ले वालों की गीबत हो रही होती थी, उल्टी सीधी बकवास हो रही होती थी। अब नया मशगला ये है कि बैठ करके दीन का तिया पाचा कर रही होती हैं, दीन के बारे में एक से एक जो है ना, वो कहीं ने किसी ने कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं ने किसी कुछ सुन सुन लिया और फिर अपने जहन में एक अपना एक तखयल बना लिया और फिर आप दूसरों को ये पढ़ा रही हैं कि ये है, ऐसा नहीं है, राइट? यानी अजीब व गरीब किस्म की जो है ना, वो खिचड़ी बना रही है बैठ करके, ठीक है? तो भाई ऐसे इल्म नहीं हासिल किया रहा था, इस किस्म की चीज़ें जो है वो इल्म वालों से पूछना ज़रूरी है। जब मैं छोटी थी तब एक गैर मुस्लिम दोस्त के साथ खेल खेल में पूजा कर रही थी, तब मेरे पेरेंट्स ने देखा और रोका इस चीज़ से। जी, गैर मुस्लिम दोस्त ने, अल्लाह ताला ने मना किया है, ठीक है ना? ये हराम है गैर मुस्लिमों को दोस्त बनाना। आप तो बहुत छोटी थी, आपको तो पता नहीं था, आपके ऊपर तो शरीयत का हुक्म भी नहीं अप्लाई होता था, लेकिन वालदैन को तो पता होना ज़रूरी था ना, ठीक है? तो हमारे माँ बाप को ये बात नहीं पता होती कि गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती अल्लाह ताला ने हराम करी है, तो अपने बच्चों को उनसे दूर रखना है। 1 घंटे में जो बच्चा 10 लेटर सीख लेता है, वो 10 दिन में भी स्कूल में नहीं सीख पाता, लेकिन और सब खराफात सीख जाते हैं। बेशक स्कूल है ही खराफात के लिए, ये आजकल के जो स्कूल हैं ये कोई हमारे दीनी मदारिस और कोई नेकों की सोहबत कोई थोड़ी होती है स्कूल के अंदर, वो खालिसतन खराफात सिखाने के लिए होते हैं और बीच में थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर्स, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स सिखा देते हैं और उसके ऊपर आपसे ढेर सारे पैसे बटोर रहे होते हैं वो, है ना? सबसे सक्सेसफुल बिजनेस है ये, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस स्कूलों का बिजनेस है, ये ठप नहीं होता, पता है आपको? खाने का बिजनेस भी ठप हो जाता है, स्कूल का बिजनेस ठप नहीं होता, ठीक है ना? या आप आजमा के देख लें, या आप जो है वो उन लोगों से पूछ लें जो कि इस बिजनेस को अंदर से जानते हैं, ठीक है ना? तो बस ये तो हमारे लिए जिंदगी मौत का सवाल है। हम खाने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, स्कूल के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इतना हमारे दिमाग को उन्होंने जो है ना वो माउफ कर दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बस ये इन्होंने ना इसी तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना करके डाले हुए। अब मिसाल के तौर पर भी रिसेंटली हमारे सामने भी एक उगदा खुला, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, ठीक है? तो वो चीज़ यानी हमने सोचा नहीं था इसके बारे में पहले कि ये जो अंग्रेजी जुबान सीखने के लिए ग्रामर का क्या यानी अमल दखल है, ठीक है? तो जब अपने बच्चों के को खूब सारी ग्रामर पढ़ाने के लिए उनकी टीचर ने बात करी ना, तो हमने कहा नहीं भाई ये तो समझ में नहीं आता मेरे, क्योंकि मैंने जितनी ग्रामर पढ़ी थी मुझे तो कुछ याद नहीं है, पहली बात ग्रामर, ठीक है? और दूसरी बात उस ग्रामर की बुनियाद पर तो मेरी अंग्रेजी है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी बहुत अच्छी है, दूसरे लोग जो है वो बड़ी बचपन से भी तारीफ करते आ रहे हैं, लेकिन उसी ग्रामर को जिन लोगों ने ज्यादा अच्छे से पढ़ा था और जिन लोगों ने ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के आए थे उनकी तो अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो मैंने अंग्रेजी कहाँ से सीखी भाई, माहौल से सीखी होती है ना, ठीक है? तो लैंग्वेज सीखने के लिए फिर ये जो ग्रामर आपके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना मोटी मोटी किताबों के जरिए से, मोटी मोटी किताबें, हत्ता के बैचलर्स लेवल की किताबें जो है वो स्कूल के अंदर पढ़ा रहे होते हैं ग्रामर सिखाने के लिए। तो भाई ग्रामर सीखने का ताल्लुक जो है वो यानी यानी जो फंक्शनल लैंग्वेज होती है ना, फंक्शनल लैंग्वेज जिससे कि आपको काम सीखना होता है और जिससे कि आपको अगले बंदे से बात करनी होती है और जिसकी बुनियाद पर जो है वो आपने एक टेक्स्ट को पढ़ना होता है, ठीक है? जो कि अंग्रेजी के लिए, ये अंग्रेजी की नॉलेज हमारे लिए फंक्शनल नॉलेज है, हमें अंग्रेजी का लिटरेचर नहीं पढ़ना, हमें शेक्सपियर को नहीं पढ़ना, ठीक है, हमें जो है ना वो उनके यानी भाई हमारा क्या ताल्लुक शेक्सपियर के साथ, ठीक है, हम क्यों शेक्सपियर और जो है वो इस किस्म के, हमें नाम भी जरूरत भी नहीं है हमें नाम उनके जानने की, वो तो भाई यूरोप की तहजीब है, हमें तो अंग्रेजी फंक्शनल काम चलाने के लिए अंग्रेजी चाहिए ना, तो उसके लिए हमें ग्रामर की जरूरत नहीं है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है ना। ये अंग्रेजों की अपनी रिसर्च भी है अब, और ये बाकायदा मौजूद है इंटरनेट के ऊपर भी आपको मिल जाएगी कि ग्रामर की जरूरत नहीं है, लेकिन कितना खर्चा कर रहे होते हैं ग्रामर पढ़ाने और पढ़ने के ऊपर, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे ऐसे जो है ना वो फजूल आइडियाज की बुनियाद पर वो अपना बिजनेस चला रहे हैं और हम उनको पैसे दिए चले जा रहे हैं, हालांकि हमारे फायदे की तालीम भी नहीं मिल रही होती स्कूल के अंदर से, ठीक है। हमें दूसरी लैंग्वेजेस किस नीयत से सीखनी चाहिए, और कौन कौन सी लैंग्वेज बेसिक हो सीखना चाहिए, जो सीखना चाहिए। देखें, अपनी लैंग्वेज जो माँ बाप की लैंग्वेज होती है ना वो लाजमी बच्चे को सिखाना है, ठीक है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो उर्दू जुबान है ना उसके साथ हमारा सौतेला बर्ताव होता है, ठीक है। गुजराती अपने बच्चों को गुजराती सिखा देगा, पंजाबी अपने बच्चों को पंजाबी भी सिखा देगा, ठीक है, तेलुगु बोलने वाला तेलुगु भी सिखा देगा, सिंधी बोलने वाला सिंधी भी सिखा देगा, लेकिन उर्दू बोलने वाला जो है ना जिसको कि उर्दू के सिवा कोई और जुबान नहीं आती, वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाता, वो क्या सिखाता है, अंग्रेजी, जैसे जैसी भी बेड़ा गरक किस्म की अंग्रेजी हो, टूटी फीट फूटी हो, लेकिन वो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाता है। उर्दू ना आना ये फैशन स्टेटमेंट है, राइट। जिसको उर्दू आती हो ना उसको जो है वो हम कमतर और कम पता नहीं क्या समझते हैं, और जिसको उर्दू ना आती हो ना उसको हम जो है वो अच्छा समझ रहे होते हैं, वी लुक अप टू दैट पर्सन जिसको कि उर्दू ना आती हो, हालांकि पैदाइश जो है वो उसकी पाकिस्तान में हुई हो, इंडिया नॉर्थ इंडिया में हुई हो जहाँ पे उर्दू ही बोली जा रही होती है, ठीक है। तो इस गुलामाना निकल करके हमें उर्दू जुबान जो है ना वो अच्छी सीखने और सिखाने की जरूरत है, खुद भी सीखने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पले बढ़ने के बावजूद उर्दू नहीं आती है, और ना लिखना तो बोलना तो फिर भी चलो आ जाता होगा, लिखना तो उनको भी नहीं आता, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो है वो आपको पता ही है, अल्लाह मेहरबानी फरमाए, ठीक है। उर्दू जुबान, फिर जो आपकी जो इलाकाई जुबान है, इलाकाई जुबान सिंधी गुजराती ये ना, अरबी जुबान, ठीक है, कुरान मजीद और हदीस मुबारका के लिए अरबी जुबान। ट्रांसलेशन से काम नहीं चलता, ट्रांसलेशन से बात बहुत कम समझ में आती है, बल्कि अक्सर गलत समझ में आती है, ठीक है ना। आप दीन की खिदमत नहीं कर सकते, आप दीन का दर्स नहीं दे सकते, दीन सिखा नहीं सकते, दूसरों को तो छोड़ना अपनी औलाद को नहीं सिखा सकते जब तक कि आपको अरबी जुबान ना आती हो, ठीक है। तो अरबी जुबान इस नीयत से सीखें कि मैं दीन को ना गहराई के अंदर समझ सकूं, कुरान मजीद के मैसेजेस को गहराई में समझ सकूं, अच्छे से समझ सकूं और गलती से बच सकूं, इसके लिए अरबी जुबान, ठीक है। खुद भी सीखने की कोशिश करें और अपनी औलाद को जरूर से सिखाएं, लाजमन सिखाएं, ठीक है। जिसकी उर्दू अच्छी हो उसके लिए अरबी सीखना आसान होता है, आसान डेफिनेटली होता है लेकिन उसको भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, और जिसको उर्दू बिल्कुल ही ना आती हो तो एक कोई बात नहीं, लेकिन बगैर उर्दू बोलने वाले लोग भी जो अंग्रेज होते हैं वो भी बहुत अच्छी अरबी सीख लेते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसको उर्दू ना आती हो वो अरबी नहीं सीख सकता, लेकिन थोड़ी सी एडवांटेज आपको मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद बदकिस्मती से हमारी गुलामी की वजह से, ठीक है ना, ये मजबूरी है खाली, ये कोई शौक से और इसलिए नहीं बल्कि मजबूरी की खातिर, क्योंकि हम गुलाम हैं, हम 1947 में आजाद नहीं हुए हैं बरतानिया से, हम बर्तानिया से 1947 में आजाद नहीं हुए हैं, ना इंडिया ना पाकिस्तान, हम अभी तक उनके गुलाम हैं, हमारे सारे निजाम उनके गुलाम हैं, तो उनका जो मवाद है ना वो अंग्रेजी में है, और वो उस मवाद के अंदर इतनी सारी चीजें उनकी मौजूद हैं कि जिससे कि हमें उनके एक यानी एक तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है ना, जैसे इवन इलाज मुआलजे के लिए आम सा मामला हो उसके लिए भी हमें अंग्रेजी जुबान की लैंग्वेज अंग्रेजी जुबान के इनकी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर के अंदर जो फितने दज्जाल का जमाना है ना, तो इन दज्जाली फितनों को आप अंग्रेजी जुबान का इल्म हासिल किए बगैर नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते, ठीक है? तो अंग्रेजी सीखें अच्छे कंटेंट को इस्तेमाल करते हुए, बुरी लिटरेचर को पढ़ करके अंग्रेजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, फजूल किस्म की चीजों को पढ़ के अंग्रेजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी के अंदर बहुत अच्छा मवाद अब मौजूद है, ठीक है? तो अंग्रेजी जो है वो उस मवाद को इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों को सिखाएं ताकि वो इनके दज्जाली फितनों से जो को उसे बाखबर हो सकें, ठीक है? मिसाल के तौर पर ये जो कोरोना वायरस दुनिया के अंदर आया था, ठीक है, तो इस वायरस के जरिए से इन्होंने बहुत सारे जो है ना वो बुरे मकासद हासिल किए हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, क्योंकि इसके खिलाफ जो बातें होती थी ना, जो रिसर्च आ रही होती थी, जो इसके बारे में जो जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अंग्रेजी जुबान के अंदर छप रहा होता था। और जिसको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती थी वो बिल्कुल बेखबर होता था उन सारी बातों से, ठीक है? बहरहाल इस किस्म के फितने जो है ना उनके और अपने दीन की हिफाजत के लिए, तो अंग्रेजी सीखने की नीयत क्या करें, अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए अंग्रेजी सीखना, ठीक है ना? पैसे कमाने के लिए खाली नहीं, पैसे तो अल्लाह ताला दे देंगे, बस जब आप इल्म हासिल कर लेंगे तो उसके साथ अल्लाह ताला ने रिस्क को एक अंदाज में जोड़ा हुआ है, ठीक है? तो अल्लाह ताला दे देंगे, लेकिन नीयत क्या करें, दीन की हिफाजत के लिए। और जाहिर है जब दीन की हिफाजत के लिए अंग्रेजी सीखेंगे तो फिर अंग्रेजी सीखने के दौरान भी तो दीन की हिफाजत करेंगे ना, यानी बुरे कंटेंट से और नाजायज कंटेंट से अपने आप को और अपनी औलाद को बचाएंगे सीखने के दौरान, ठीक है? तो स्कूल सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? देखें हमारे मशायख ने बहुत इसको हमें समझाया, हजरत अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अली मियां रहमतुल्लाह अलैह जिनको कहा जाता है, ठीक है? उन्होंने बहुत इसके ऊपर बात करी, बहुत मेहनत करी कि मुसलमान जो है ना वो अपने स्कूल बनाए, ठीक है? इंडिया के अंदर जो है वो मुसलमान अपने स्कूल बनाए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दीनदार लोग अपने स्कूल बनाए, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो सारी दीन मुसलमान है ना, 98% या 95%, ठीक है? तो पाकिस्तान में ये कहना है कि मुसलमान अपने स्कूल बनाए, तो भाई वो तो सिटी स्कूल भी मुसलमान का ही है, राइट? और जो बीकन हाउस है, बीकन हाउस नहीं कहना चाहिए, बीकन ऑफ होप होता है, यहाँ तो बेकन है पूरा का पूरा, ठीक है? तो बेकन हाउस जो है वो भी तो मुसलमान ही का, सो कॉल्ड मुसलमान ही का क्यों ओनरशिप में है ना, ठीक है? और ग्रामर स्कूल और फलाने स्कूल ये भी तो पाकिस्तान के अंदर जो दीन की हिफाजत की फिक्र करने वाले हैं उनको स्कूल बनाने की जरूरत है, ठीक है ना? और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खैर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम शुरू भी कर दिया, इवन इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन जो लोग स्कूल नहीं बना सकते तो कम अज कम अपनी औलाद की तो स्कूलिंग की हिफाजत करें ना, पूरे मोहल्ले की फिक्र तो भाई बाद में आएगी, पहले अपनी औलाद जो अपना बेटा है अपनी बेटी है उसकी तो उसकी कैसी कैसे हिफाजत करेंगे, प्राइवेट स्कूलिंग के जरिए से, प्राइवेट स्कूलिंग, ठीक है? यानी कोई ऐसा टीचर या ऐसे टीचर्स तलाश करें कि जो कि आपके बच्चों को प्राइवेटली पढ़ा सकें, ठीक है ना? उसको जो है वो उस माहौल के अंदर नहीं भेजें जिस माहौल के अंदर जो है वो यानी स्कूल के माहौल में खराबी, या अगेन हम इसको जिक्र करना जरूरी समझते हैं कि स्कूल के माहौल में जो सबसे बुरी चीज है ना, सबसे बुरी चीज, जल्दी से अगर आप में से कोई बता दे, स्कूल के माहौल में, स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहां पे सबसे खतरनाक चीज क्या चीज होती है? जी, को एजुकेशन, गलत जवाब। जिसकी उर्दू अच्छी हो उसका। अच्छा, हमारे एरिया में मुसलमान स्कूल बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो मुसलमान भी देख लिएगा कौन से वाले मुसलमान है। जी, टीचर्स, टीचर, उस्ताद, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है, उस्ताद, ठीक है? क्योंकि उस्ताद जो है ना ये बच्चे का जहन बनाता है। एक बात याद रखें, पुराने लोग भी दोबारा से याद करें और नए लोग जो है वो इसको याद रखें अपने पास। एक जबरदस्त मकूला है हमारे शेख साहब का, ये आजिज पता नहीं दर्जनों मरतबा बयान कर चुका है कि उस्ताद अगर मुसलमान हो तो वो बाइबल पढ़ा करके भी तालिबे इल्म को मुसलमान बना सकता है, यानी करिकुलम बाइबल हो, लेकिन पढ़ाने वाला अगर उस्ताद मुसलमान है ना, यानी सही मुसलमान है, सही अकीदों वाला, सही अमल वाला मुसलमान है, तो वो बाइबल पढ़ाएगा लेकिन पढ़ने वालों को मुसलमान बना देगा। और अगर मुसलमान काफिर है, ठीक है ना, या ये सॉरी, अगर उस्ताद काफिर है, बेशक उसका नाम मुसलमानों वाला हो, बेशक उसके कपड़े भी मुसलमानों वाले हों, लेकिन उसका जहन जो है वो काफिर है, उसके अकीदे खराब हैं, तो ऐसा उस्ताद कुरान मजीद पढ़ा करके भी तालिबे इल्म को काफिर बना देगा। याद रखें इस जुमले को, याद रखें, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो बाद में गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएंगे, आ जाएगी बात इंशाल्लाह। ठीक है, मुस्लिम टीचर है ना, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई मुसलमान भी ऐसे होने चाहिए कि जिनका अकीदा भी सही हो और जिनका जो है ना वो नज़रिया भी सही हो। ठीक है, तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इतना तो है, एक स्टेप तो कम से कम है ना, कि जी हिंदू टीचर की बजाय जो है मुसलमान टीचर है, या सिख टीचर और क्रिश्चियन टीचर की बजाय मुसलमान टीचर है, एक स्टेप तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि जो मुसलमान हैं तो वो भी ज़रा अच्छे होने चाहिए, सोबत याफ्ता हों, जिनका कि कुछ तरबियत वगैरह हो चुकी हो, जहन साजी हुई भी हो। ऐसे मुसलमान भी तो है ना कि जो कि यानी इस दुनिया को सभी कोई सब कुछ समझते हैं, गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, है ना, गुनाह को समझते हैं कि जी कुछ नहीं होता, शरीयत उनके नजर में कोई अहमियत नहीं रखती। क्या हर मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ता है? फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज नमाज पढ़ना, ठीक है, क्या हर मुसलमान नमाज पढ़ता है? तो खाली ये कह देना कि जी इतनी सारे टीचर मुसलमान हैं, है ना, तो क्या ख्याल है आपका, क्या हर मुसलमान नमाज पढ़ता है? क्या हर मुसलमान औरत जो है वो पर्दे के हुक्म के ऊपर अमल करती है? क्या हर मुसलमान जो है वो उसके अकायद फरिश्तों के बारे में, तकदीर के बारे में सही हैं? अरे के तो नहीं है ना, तो फिर खाली ये कह देना कि जी टीचर मुसलमान है, क्या ये काफी है? ठीक है, जजाकअल्लाह, आपने लिख तो दिया है लेकिन आप सबको दिखा दें डायरेक्ट मैसेज में, मुझे आप दोबारा पढ़वा करके क्या फायदा। ठीक है, ओ वला तक्तुलू औलादकुम खश्यता इम्लाक, कि भाई हमारे बच्चे खाएंगे कहाँ से, और हमारे बच्चों का जो है ना वो ये निज़ाम, जिंदगी का निज़ाम कैसे सही होगा, तो उसके लिए उनको हराम तरीके से तालीम दिलवा देना, हराम कंटेंट तालीम का दिलवा देना, जिसके अंदर उनका अकायद उनके ख़राब हो जाए, जिनके अंदर उनके आमाल ख़राब हो जाए, जिनके अंदर जिस चीज़ों को पढ़ करके उनकी जो है वो हया जाती रहे, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो सजा से नहीं बच सकेगा, जैसा कि आज हाल यही है कि मुसलमानों को हर लिहाज से जो है वो सजाएं मिल रही है, उसकी वजह यही है कि हम ना अल्लाह ताला के हुक्मों को इन चीज़ों के अंदर नहीं पूरा कर रहे होते। हम तालीम तो दिलवा रहे होते हैं लेकिन अल्लाह के हुक्मों को तोड़ करके तालीम दिलवा रहे होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास तो इसी एक टॉपिक के ऊपर ही मुकम्मल हो गई। आगे जो है ना, वला तकरबु जना इन्नहु काना फाहिशा वसा सबीला, के जना के करीब भी मत जाओ, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बुरा रास्ता है। तो इसका ताल्लुक आज की क्लास से भी बड़ा गहरा है, क्योंकि तालीमी निजामों के तालीमी इदारों के अंदर जो औलाद का जहन बन रहा होता है ना, ठीक है, को एजुकेशन अगर है तो फिर तो जिना के करीब, ठीक है ना, क्लास के अंदर लड़कियां भी मौजूद हैं तो छोटे बच्चे होंगे तो जाहिर है कहाँ से करेंगे, लेकिन जहां से थोड़ा सा बड़े हुए, टीवी के ऊपर उन्होंने ऐसे सीन्स देखे, ठीक है, किताबों के अंदर उन्होंने ऐसी कहानियां पढ़ी, तो इवन छोटे बच्चे भी जो है ये वाला फेल करते हैं। हत्ता कि अमेरिका के अंदर तो बड़ा वो टाइम मैगजीन के जो है वो कवर पेज के ऊपर है ना, प्रेग्नेंट चाइल्ड, 13 साल की बच्ची थी, और ये तो आम है वहां पर, और जाहिर इंडिया के अंदर भी ये चीज और पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज खुल करके सामने नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि होता नहीं है। ठीक है, तो बच्चे कितने बुरे माहौल से एक्सपोज होते हैं। अब जो है वो जब बच्चे बच्चियां साथ पढ़ेंगे तो फिर ये हरकतें तो वो करेंगे, और थोड़े से बड़े होने के बाद 15-16 साल के बाद तो फिर मेच्योर भी हो जाते हैं फिर वो फिजिकली। ठीक है, तो अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, करीब भी मत जाओ। तो ऐसे तालीम इदारों के अंदर भेजना जहां पर के को एजुकेशन है, तो वो क्या है, जना के करीब अपनी औलाद को भेज रहे होते हैं। फिर जो मटेरियल के बारे में बात हो चुकी कि उसके अंदर इतने सजेस्टिव मटेरियल होता है, इस किस्म का, कि जिसको के पढ़ करके ना एक आम आदमी जो कि इस तरह सोचता भी नहीं है, जिसका के ध्यान कभी ना गया हो, लेकिन वो एक कहानी पढ़ करके उसकी शहवत बेदार हो सकती है और हो जाती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, वला तकरबुल ज़िना। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के माहौल के अंदर तो ये चीज़ कामिल हो चुकी होती है बिल्कुल। ठीक है, कोई एक आध अगर एक्चुअल इस गुनाह से बच भी जाए तो भी इसके जो है ना, वो जो लवाजमात होते हैं उससे नहीं बचता, और फिर इसका असर जो है वो शादीशुदा जिंदगी के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है, अगर शादी हो गई तो। ठीक है, शादी होने के बाद भी जो पुराना अफेयर होता है ना, वो खत्म नहीं होता, वो दिल से भुला भुला नहीं दिया जाता, हत्ता के पीछा कर रहे होते हैं शादी के बाद भी, कि भाई किसी तरीके से इसकी शादी जो है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना, ये यानी जिना के करीब जाने के अंदर ही शामिल होते हैं। बाकी बहुत सारी और तफसीलात हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो कि इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। किसी का कोई कमेंट रह गया हो तो, आफ्टर 12th को एजुकेशन बहुत कम कॉलेजेस होते हैं, को एजुकेशन बहुत कम कॉलेज होते हैं, तब क्या करना होगा? अगर लड़के हैं तो उनको तो पहले से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मेहनत करनी होगी, ताकि वो जब यानी को एजुकेशन कॉलेज के अंदर, स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं, तो वो उस माहौल से जो है ना वो बच सकें। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मतलब क्या है, कि लड़कों को जो है ना वो अल्लाह वालों के साथ जोड़ना, मशायख के साथ जोड़ना, या अगर मशायख अवेलेबल बिल्कुल नहीं हो रहे तो तबलीगी जमात के अंदर बहुत अच्छे से तबलीगी जमात की मेहनत के अंदर लगाना। ठीक है, तो फिर वो जो लड़का होता है ना, वो फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज के माहौल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बचा रहता है। ऐसा बनना ज़रूरी है कि वो औरत से बात ना करे, अगर बात करनी पड़ जाए तो वो डरता डरता और बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो उसके ऊपर किसी औरत से बात करना, ऐसा अपने लड़के को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा अपने लड़के को बनाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजने से पहले, कि वो पहली बात तो औरत की तरफ नजर उठा के ना देखता हो, और दूसरी बात यह है कि अगर उसको किसी से बात करनी भी पड़ जाए, नजर उठा के बात करने की तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर वो बात कर भी रहा है तो उसके पसीने छूट रहे हो औरत से बात करते हुए, ऐसा अपने लड़के को बनाना पड़ेगा। ठीक है, और लड़की को यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता लड़की को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजने का तो। ठीक है, और उसके ऊपर अभी तो टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन बेशुमार मौकों पे अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बात हो चुकी है। ठीक है, चलें फिर, बातें तो अभी बहुत सारी हैं इस टॉपिक पर, इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।